तारा परी गायब होकर अमन और उसकी माँ की सारी बातें सुन लेती है। अब उसका एक ही मकसद है, अमन और खुशी की हल्दी का फंक्शन रोकना, क्योंकि अगर अमन को खुशी के नाम की हल्दी लग गई तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर वो तारा परी के लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा। तारा परी भूल चुकी थी कि उसका एक पहर पूरा होने वाला था। वो अभी भी अमन के कमरे में ही थी और अचानक अमन जैसे ही पलटा, उसके लिप्स तारा परी के लिप्स से जा टकराए और वो दोनों एक साथ बेड पर गिर गए और एक दूसरे में खो गए। एक दूसरे को पैशनेटली चूमने लगे। तभी एक अनजान साए ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके तेज आंधी चलाकर अमन के कमरे का वॉस गिरा दिया, जिससे वो दोनों अलग हो गए। तब अमन ने तारा परी को काफी खरी खोटी सुनाई, जिससे तारा परी को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने अमन को खींचकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे काफी सारी बातें सुना दी। तारा परी के चांटा मारते ही अमन गुस्से से भर उठा था और उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसके करीब जाकर बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरा नाम अमन सिंह राठौड़ है और तुम दो बार अमन सिंह राठौड़ पर हाथ उठा चुकी हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें जिंदा गाड़ सकता हूं, समझी तुम? अमन की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो चुकी थीं। तारा परी समझ गई कि किसी भी पल ये इंसान जिन के रूप में आ सकता है, जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब तारा परी ने इंसानों के सबसे बड़े हथियार को यूज करने का फैसला किया। वो था इंसानी आंसू। जी हाँ, आंसू किसी भी इंसान को हर प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तब तारा परी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बोली, मुझे छोड़ो सर, मुझे दर्द हो रहा है। अमन उसको इस तरह से रोता देख एकदम से नॉर्मल हो गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। अमन ने देखा उसके हाथों पर गहरे नीले निशान पड़ चुके थे। अमन को याद आया कि उसने गुस्से से उसके हाथ पकड़े थे, इसीलिए वहां निशान पड़ चुके थे। अमन तारा परी को कुछ कहना चाहता था, तभी तारा परी ने अपने दोनों हाथों से अमन के सीने पर जोर से धक्का दिया और रोते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गई। तारा परी अमन से गुस्सा होकर अपने कमरे में आ गई थी। उसे अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि एक इंसानी कमजोरी था। इंसान को सबसे बड़ी कमजोरी उसका गुस्सा था। तारा परी ने खुद को संभालने की कोशिश की और जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। वेल, अभी तारा परी का ध्यान केवल अपने मकसद पर था। उसे दो और काम करने थे। एक तो उन लोगों का पता लगाना था जिनसे करिश्मा जी डरी हुई थी। आखिर कौन लोग हो सकते थे वो जो अमन सिंह राठौड़ के घर में घुस आए थे और पूरा हॉल तहस नहस कर जा चुके थे? आखिर कौन सी शक्ति थी वो जो इन पावरफुल जिन्नों को भी डरा सकती थी? क्योंकि जिस तरह से पल भर में ही करिश्मा ने पूरा का पूरा हॉल साफ कर दिया था, तारा परी समझ चुकी थी कि करिश्मा जी भी कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो भी एक शक्तिशाली जिन थी। अब सवाल ये उठता था कि इतने पावरफुल जिन्नों को आखिर कौन डरा रहा था और अमन सिंह राठौर के पिता के साथ क्या हुआ था? क्या वो जिंदा हैं या मर चुके हैं? आखिर क्या है इन लोगों का अतीत? मुझे सब पता करना होगा। और दूसरा वो तिलिस्मी पत्थर, आखिर उस पत्थर की क्या कहानी थी? आखिर उस तिलिस्मी पत्थर के पीछे कौन लोग पड़े थे और है क्या वो पत्थर? मुझे हर हाल में पता करना होगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी था उस लड़की को अमन की जिंदगी से दूर करना, क्योंकि अगर गलती से भी अमन का नाम उस लड़की के साथ जुड़ गया तो उसका पृथ्वी पर आने का मकसद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो एक बार फिर उस राक्षस के चंगुल में फंस जाएगी और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। इसीलिए उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके खुशी का पता निकाला और उसके बारे में जानने के लिए उसे एक बार फिर अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग करना था। लेकिन इस बार उसे वो प्रयोग अमन के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए करना था। वो खुशी का पूरा सच जानना चाहती थी, क्योंकि हल्दी की रस्म होने से पहले पहले उसे खुशी को अमन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल बाहर जो करना था। और तारा परी के पास केवल आज की ही रात थी, बाकी की चीजों के बारे में वो बाद में पता लगाएगी। अभी उसकी जिंदगी का पहला काम खुशी को अमन की जिंदगी से बाहर करना था। उसके लिए उसने अपना प्लान तैयार किया और मंत्र का जाप करने लगी और कुछ ही पलों में वो एक बार फिर से अदृश्य हो गई थी और पलक झपकते ही वो अमन के बंगले से सीधा खुशी के बेडरूम में पहुंच चुकी थी। तारा परी ने देखा खुशी अपने बड़े से शानदार पलंग पर सोई हुई थी। उसका जिस्म नेक तक एक व्हाइट कलर की ब्लैंकेट से कवर था। खुशी एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। तारा परी को समझ नहीं आया वो खुशी का सच कैसे पता करे, क्योंकि वो तो सोई हुई थी। तारा परी ने उसके कमरे की तलाशी लेने का इरादा बनाया और अभी वो तलाशी शुरू ही करना चाहती थी कि तभी एक अर्धनग्न लड़का उसके बाथरूम से बाहर निकला। तारा परी हैरत से उसे देखने गई और सोचने लगी, एक जवान लड़की के कमरे में इस वक्त ये अर्धनग्न लड़का क्या कर रहा था, जबकि खुशी तो आराम की नींद सोई हुई थी। तारा परी सांसें थामकर उस लड़के को देखने लगी कि आखिर ये लड़का करने क्या वाला है। तभी वो लड़का बेड पर लेटी खुशी के पास गया और धीरे धीरे उसकी चादर खींचने लगा। तारा परी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसे तो लगा था खुशी सोई हुई थी, लेकिन वो तो केवल सोने का नाटक कर रही थी इस लड़के के लिए। जैसे जैसे खुशी की चादर नीचे की ओर सरक रही थी, उसका नग्न बदन दिखाई देने लगा था। तारा परी को समझते देर नहीं लगी कि खुशी बिल्कुल न्यूड लेटी हुई थी। उसने कुछ भी नहीं पहना था, शायद इसीलिए उसने अपने आप को एक चादर में लपेट रखा था। अभी तारा परी सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो लड़का खुशी के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। खुशी, अरे क्या कर रहे हो, अभी अभी तो गए हो सब कुछ करके, तुम फिर से शुरू हो गए। उसे किस करता हुआ वो लड़का कहने लगा, जान अजीब सी कशिश है तुम में, मन ही नहीं भरता। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे में खो गए और दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ किस की बरसात करने लगे। और कुछ ही देर में खुशी की मदहोशी वाली आवाजें उसके बेडरूम में गूंजने लगी। उन दोनों को एक होता देख तारा परी को काफी शर्म आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो शर्म के कारण अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए तारा परी ने उन दोनों का ये गंदा खेल अपनी आंखों में रिकॉर्ड कर लिया। तारा परी ने अपनी नीली आंखों में बसी शक्ति का प्रयोग किया और जो कुछ तारा परी वहां देख रही थी वही अब अमन और करिश्मा भी देख रहे थे। सा क्योंकि तारा परी ने आंखों ही आंखों से करिश्मा जी और अमन सिंह राठौड़ के नंबर पर खुशी और उसके बॉयफ्रेंड का लाइव टेलीकास्ट भेज दिया था। तारा परी जो भी कुछ देख रही थी वही सब कुछ करिश्मा जी और अमन भी देख रहे थे। खुशी की सच्चाई दिखाने के लिए तारा परी ने अपनी नीली आंखों की शक्तियों का प्रयोग किया था। अमन और करिश्मा जी तो सोच रहे थे कि किसी ने खुशी और उसके बॉयफ्रेंड की लाइव रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, जबकि सच तो ये था कि ये सब तारा परी की शक्तियों का कमाल था। जब खुशी और वो लड़का अपना काम पूरा कर चुके तब उस लड़के ने खुशी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, आखिर कब तक चलेगा ये सब, क्यों कर रही हो तुम उस उल्लू से शादी। खुशी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, कम से कम उसे उल्लू तो मत बोलो, मेरे लिए वो एक एटीएम मशीन है जिससे जब चाहो जितना चाहो पैसा निकाल लो।
सच बताओ, उस दिन जब उसने मुझे तुम्हें चूमते हुए देखा था ना, मुझे तो लगा था गई मेरी एटीएम मशीन मेरे हाथ से, लेकिन मेरे रोध होकर उसकी माँ को अपनी बातों से फंसा लिया। और अब देखो, कल मेरी हल्दी है उसके साथ, तुम देखना एक बार मेरी उससे शादी हो जाए तो हमारी फिर ऐश ही ऐश होगी। ऐसा कहकर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। करिश्मा जी और अमन उन लोगों का लाइव टेलीकास्ट देख चुके थे और अमन और करिश्मा दोनों ही कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि जिन थे। लाइव वीडियो देखने के बाद उन दोनों को बहुत गुस्सा आ गया था और वो खुद को रोक नहीं पाए और अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो सीधा खुशी के बेडरूम में पहुंच चुके थे। तारा परी तो वहीं मौजूद थी लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था। अमन और उसकी माँ को एक साथ अपने कमरे में देखकर खुशी और उसका आशिक बिचल गए और अनायास ही खुशी के मुंह से निकल पड़ा, आप यहाँ क्या कर रही हो और अंदर कैसे आए तुम दोनों। अमन का गुस्सा उन दोनों को देखकर जवाब दे चुका था और देखते ही देखते वो गुस्से से लाल पीला होने लगा और जल्दी ही वो एक बड़ा ही भयानक रूप में बदल चुका था। खुशी और उस लड़के का डर के मारे बुरा हाल था। खुशी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अमन ने उसे कोई मौका नहीं दिया और जिन बने बने अपनी भयंकर आवाज में बोला, बहुत शौक है ना तुम दोनों को एक साथ रहने का, अब तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। ऐसा कहकर अमन ने उन दोनों को एक साथ उठाकर अपने मुंह में रख लिया और देखते ही देखते वो उन्हें जिंदा निगल गया। करिश्मा जी चुप रहीं, वो भी शायद यही चाहती थी। अपने आसपास देखकर वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। तारा परी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। एक पल को तो वो भी कांप गई थी लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो भी गायब हो चुकी थी और अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। तारा परी काफी खुश थी क्योंकि उसका काम हो चुका था। अब कल अमन की कोई हल्दी नहीं होगी और अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ तारा परी के साथ होगी। बस यही सोचती हुई वो आराम करने लगी और जल्दी ही एक गहरी नींद में सो गईं।